आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, आई हुई तमाम खुदा खुदा कलीसिया के लिए, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, नौजवान, खुदा खुदा मौजूद हैं। सबके लिए खुदावंद तेरी हिकमत और ख़ास कर अपने लबों पर तेरा कब्ज़ा, तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, ताकि इंसानी सोच नहीं बल्कि खुदावंद तेरी अलाही सोच एंड तेरा कलाम, जो आसमानी और रूहानी और वाहद जरिया है हम सब की रूहानी तरक्की का, तेरे लोगों तक पहुंचाने वाला बनूँ। खुदा पाक रू मेरी रहनुमाई कर, और आज का बीज जो हम सब सबकी ज़िंदगी में बोया जाए, वो कसरत से बराबर और बहुत ही बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सबको याद है कि हम नए अहदनामा में से आयत बा आयत खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। बहुत दफ़ा हम कुछ लफ्ज़ों पर गौर करते हैं, जैसे पिछले दिनों में हमने पालूस रसूल के ख़त में से, जो इफ़सियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत में से, मिसरा या मुहावरा देखा था कि अपने अगले चाल चलन, और फिर हमने एतवार की इबादत में देखा था पुरानी इंसानियत जो गुनाह के इख्तियार में है, और हमने देखा था और सीखा था कि नई इंसानियत को पहनना है और पुरानी इंसानियत को उतारना है। इसके बारे में हमने यीशु मसीह के बयानात में से उस बयान को देखा था जो यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों के रूबरू जब उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं समझ आ रही, तुम इसलिए नहीं मेरे कलाम को कबूल करते, तुम इसलिए मेरे कलाम को अपने दिलों में जगह नहीं देते, क्योंकि नई मैं नई मक्षों में रखते हैं, भरते हैं, कोई नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डालता। जिसमें से हमने यही सीखा था कि पुरानी मशकों से मुराद वो तमाम पक्की और फरीसी और उस वक्त के रहनुमा हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सच को, उसकी तालीम को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी तालीम को, जो कि गलत नहीं थी, दुरुस्त थी, शरीयत की जितनी भी तालीम दी गई 10 अहकाम से लेकर हर वो हुक्म जो दिया गया था मूसा की शरीयत में, उस सब का देने का मकसद यही था कि मसीह को वो जाने, पहचाने, उसकी ज़रूरत को समझे, क्योंकि मसीह के बगैर लिखा है कि पालूस रसूल कहता है कि अगर मैं सारी शरीयत पर अमल करूं और एक हुक्म को तोड़ दूं, तो मैं सारी शरीयत का क्या ठहरा? मुजरम ठहरा। तो शरीयत देने का मकसद यही था, उन तमाम सोचों को, हुक्मों को, बयानात को, किताबों को जो मूसा के वसीला से, नबियों के वसीला से, अंबिया असगर और अंबिया अकबर यानी के यर्मिया, यसाया, हिजकियल, दानियल, इन नबियों के वसीला से, और फिर यूना नबी, उसके बाद फिर हम देखते हैं हबकूक नबी, उसके बाद होसिया नबी, नाहूम, नहमिया और दूसरे तमाम नबियों के बायस जो किताबें दी गई, उन सब का देने का मकसद यही था कि आने वाले वक्त में वो मसीह के मुश्ताक हों। तो हमने नई मैं के बारे में देखा जो मसीह की तालीम की तरफ, मसीह के सच की तरफ और खुदा के रूह की तरफ भी इशारा करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम सीख रहे हैं, जैसे कि इफ़सियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत में, इन दो आयतों का जो बड़ा मफहूम ये है कि पुरानी इंसानियत को उतारो, यानी कि पुरानी इंसानियत के उस सारे इख्तियार को, सारे जोर को जो गुनाह के बायस है, उसे अपनी ज़िंदगियों में जगह ना दो, और नई इंसानियत को पहनो, यानी कि हर रोज़ फैसला करो कि हम रूह में ज़िंदगी बसर करेंगे या रूह की मुखालफत में। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि हम इस नुक्ते पर गौर करें कि पुरानी और नई इंसानियत के दरमियान जो रूहानी जंग है, हम उसका बहुत अहम हिस्सा हैं। इसलिए हमें ईमानदार होते हुए इस रूहानी जंग में, जो जंग कहाँ पर लगी हुई है, हमारे सोच के, हमारे जहन, हमारे सोचने का जो मरकज मरकज है, यानी कि हमारी रूह में, हमारे सोचने के उस मैदान में, ये जंग यहाँ पर शुरू होती है। उसके बाद फिर अमली तौर पर, जाहरी तौर पर नज़र आती है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में से पुरानी इंसानियत की और नई इंसानियत के दरमियान जो जंग है, पुरानी इंसानियत ये चाहती है कि हम खुदा की नाफरमानी करें। पुरानी इंसानियत का एक ही मकसद है कि खुदा की नाफरमानी और मुखालफत और हर उस काम को करने की ख्वाहिश पैदा करना जो खुदा पसंद नहीं करता। इसलिए ईमानदार, तीन बड़े गुनाह जो हम हर रोज जाने जाने में करते हैं और हमारे तीन बड़े दुश्मन हैं, रूहानी जंग में तीन बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पुरानी फितरत, जिसे गुनाहलूदा फितरत भी कहा गया है, जिसे पुरानी फितरत भी कहा गया है, जिसका एक ही मकसद है कि रूह के खिलाफ लड़ाई करना। मेरे साथ एक हवाला देखें। पहले हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत में पालूस कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेबों की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक रास्तबाजी, पाकीजगी, सच्चाई, खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। मेरे साथ एक हवाला देखें इस रूहानी जंग में, गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब। 5वां बाब पालूस रसूल यहाँ पर ईमानदारों को उस हुक्म, उस सच्चाई के बारे में बयान करता है कि तुम आज़ाद किए गए हो। ये आज़ादी जिस्मानी आज़ादी के बारे में वो बात नहीं कर रहा, रूहानी आज़ादी के बारे में, क्योंकि एक दौर में पालूस उनको बयान करता है कि तुम गुनाह के गुलाम थे, गुनाह तुम पर हाकम था, गुनाह का जोर तुम पर हावी था, गुनाह के बायस तुम गुमराह थे, अंधे थे, लाचार थे, जिसे कह सकते हैं कि फालज फालज की हालत में थे, कि गुनाह ने तुम्हें इतना नकम्मा कर दिया था। ये बात हम इसमें से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने तुम्हें गुनाह के जुंगल से, गुनाह की ताकत से छुड़ाया। इसलिए अब तुम आज़ाद हो, आज़ाद होते हुए तुम्हें मसीह के प्यार, मोहब्बत और उसके हुक्मों को मद्देनजर रखते हुए क्या करने की ज़रूरत है? उस जोर को जो जोर ना पहले कभी किसी को मिला है, उस जोर को, उस कुव्वत को, उस ताकत को खुदा का पाक रूह कहते हैं। ये खुदा का पाक रूह पुराने अहदनामे के हम पूरी 39 किताबों में देखते हैं कि जगह ब जगह हमें खेमा तजमा में, मैदान में, बियाबान में, मुख्तलिफ सूरतों में खुदा का पाक रूह जाहर होता नजर आता है। और हमें कोई भी ऐसा बयान नहीं मिलता पूरे पुराने अहदनामा में कि कहीं पर खुदा की मुस्तकल हजूरी या खुदा का, क्या कहते हैं, कि मुस्तकल जाहे मकाम ईमानदारों में हुआ हो। हम सैमसन की मिसाल देखते हैं। सैमसन पर खुदा का रूह आता था तो वो जोर हासिल करता था और अजीब अजीब काम होते थे। एलिया के वाक्य में हम देखते हैं कि खुदा उसके सामने आता है, धीमी आवाज में उससे कलाम करता था और वो जो कुछ सुनता था लोगों तक पहुंचाता था और वो फलदार जिंदगियों के लिए बनता था। दाऊद नबी के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद पर खुदा का रूह ठहरता था तो वो जाति जूलियों जैसे बथेरे मुंह बड़बोले जो खुदा की मुखालफत और खुदा पर नाजिश करने के लिए अपना मुंह खोलते थे, उन जैसे दुश्मनों के सर कलम करता था। और देखते हैं कि खुदा का रुआता था, जाता था। लेकिन ये कुदरत जो आपको, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ये कुदरत क्या है? खुदा का पाक रूह। खुदा का पाक रूह चाहता है कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें, लेकिन हमारी पुरानी इंसानियत क्या चाहती है? कि हम उस पुरानी इंसानियत की मर्जी को पूरा करें। और ये क्या है? नाफरमानी, हर तरह की बुरी सोच और दुनिया में दुनिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इसलिए गलतियों 5 बाप उसकी 16वीं आयत में इस कुदरत के बारे में हमें बताया गया है कि जब हम इस कुदरत में चलेंगे तो ये कुदरत अजीब अजीब हमारी ज़िंदगी में बरकत का बायस बनेगी। पालूस कहता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। इसमें जो हालत है, जो शर्त या हालत, वो ये है कि मेरी शर्त ये है, मैं हुक्म के तौर पर कहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम जिस्म के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करोगे, लेकिन अगर तुम रूह के मुतहत, रूह की रहनुमाई में चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे। सो हमारी सबसे बड़ी जंग किसके साथ है? हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ। हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें कैसी हैं? खुदा को खुश नहीं करना चाहती। जिस्मानी ख्वाहिश क्या करती है? नाफरमानी, बुरी शहवतें यानी कि बुरी सोचें। और जिस्म के काम, आप इसे देख सकते हैं कि जिस्म के काम में, जिस्म के जितने भी काम हैं वो क्या हैं? खुदावंद की मुखालफत में सर उठाते हैं। तो पहला दुश्मन हमारा कौन है? हमारी पुरानी फितरत, ऐसी फितरत, ऐसी क्या कह सकते हैं कि फितरत जो हमें आदम से मिली है, जिसे जिस्म कहा गया है, जिसे जिस्मानियत भी कहा गया है, जिसे ज़मीनी भी कहा है, ज़मीनी सोच, और जिसे जिस्म की ख्वाहिश भी कहा गया है। इसलिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जिस्म, जिस्म की ख्वाहिशें। जिस्म क्या चाहता है? जिस्म की ख्वाहिश क्या है? जिस्म क्या करता है? रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना हो। पालूस रसूल इसके बारे में हमें वाजह तौर पर बयान करता है अपनी रूहानी जंग में। पालूस रसूल इसके बारे में कहता है, मेरे साथ एक हवाला देखें, ये जंग ईमानदारों को क्या है? दरपेश है। दरपेश से मुराद यानी कि ईमानदारों को इसका सामना है। गैर ईमानदार इस बात का अंदाज़ा ही नहीं, ना ही वो समझ सकते हैं रूहानी बातों के बारे में। इसलिए रोमियो 7 बाब देखें, 7 बाब उसकी 14वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। पालूस रसूल यहाँ पर रोमियो के, रोम के रहने वाले ईमानदारों को तालीम देता है, सिखाता है कि तुम्हें जिस्म की ख्वाहिश में नहीं, जिस्म के जोर में नहीं, उसकी मुतहदी में नहीं, बल्कि उस नए इंसान के जोर में चलने की ज़रूरत है। बेशक हमारी आपस में लड़ाई है, और ये लड़ाई क्या है? 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बेका हुआ हूं। और 15वीं आयत में कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिस से मुझको नफरत है वो ही करता हूं। आप अक्सर अपनी अपनी जात में ये बात देखते हैं कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहुत दफा झूठ बोलते हैं। आप बुरी सोच नहीं, हम बुरी सोच नहीं रखना चाहते, बहुत दफ़ा हम बुरी सोच रखते हैं। हम हसद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हसद करते हैं। हम फरेब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी फरेब की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो पुरानी जिस्मानी फितरत है वो यही चाहती है कि हम बार बार गिरें। लेकिन सबसे बड़ी अजीम बात यह है कि खुदा का फजल हर सुबह हम सब के लिए तरोताज़ा है। पालूस रसूल इसी बात को कहता है, और उसने इस बात को सीखा, उसने इस बात के बारे में क्या की? बहुत ही उम्दा, क्या कहते हैं, कारकर्दगी हासिल की, जिसे कह सकते हैं कि वो इस बात का कारीगर, तजर्बेगार बन गया कि किस तरह वो जिस्म की ख्वाहिशों को ना करे। हम भी इस बात से सीख सकते सकते हैं, क्योंकि पौलुस जो कुछ करना चाहता है रूह में वो नहीं कर पाता, क्योंकि जिस्म उसको बहकाता है, जिस्म की ख्वाहिशें उसको बुरी राहों की तरफ ले जाती हैं। आप हरगिज ना समझे कि पालूस रसूल था और उसको किसी आजमाइश का सामना नहीं था। पालूस रसूल ने बहुत सी आजमाइशों का सामना किया और उन पर गालब आया कब? जब वो रूह के मुआफिक चला, जब रूह कुदस को उसने अपनी जिंदगी में काम करने दिया। हमें भी इस राज को जानने की जरूरत है ईमानदार होते हुए। मेरे साथ एक हवाला देखें, पहला ग्रंथियों उसका नामा बाप, पहला ग्रंथी उसका नामा बाप। यहाँ पर पालूस रसूल दौड़ने वाले की मिसाल देता है, जीतने वाले की मिसाल देता है, और आखिर में वो इस रूहानी जंग के बारे में जिसमें आप शामिल हैं, चाहे आपकी पैदाइश, रूहानी पैदाइश कल हुई हो या अभी हुई हो, हम जिस वक्त यीशु को कबूल करते हैं, फजल के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, उसी वक्त हम मसीह की इस रूहानी जंग में शामिल हो जाते हैं, जिसमें वो हमें अपने बेटे बेटियां और मसीही सिपाही होने का लकब देता है। तो पहला करंथियों उसका नामा बाप, उसकी 26वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। पलूस यहाँ पर मिसाल देता है पहलवान की, दौड़ने वाले की, जो कोई जीतता है वही सेहरा ले जाता है, वही इनाम ले जाता है। 26वीं आयत में कहता है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेटिकाना नहीं, यानी कि बगैर जाने सोचे समझे नहीं, समझ रखते हुए, यानी बेटिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके अपने आप को अपने और तो औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। पालूस रसूल की ज़िंदगी से हमें यही बात सीखने को मिलती है कि वो अपने जिस्म को अपने कब्ज़ा कंट्रोल में शिकंजा में रखता है, जिस्म की ख्वाहिशों को अपने ऊपर गालब नहीं आने देता। अगले दो दुश्मनों के बारे में हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। आज हमने सिर्फ सीखा जिस्म जो हमारी हमदर्दी में नहीं बल्कि रूहानी जंग में खुदा की मुखालफत में सर उठाता है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें और पालूस रसूल की तरह अपने बदन को हर रोज़ काबू में रखें, जिस्म की ख्वाहिश को नहीं बल्कि रूह की ख्वाहिश को पूरा करें। अहम दुआ करें। खुदा बाप, हम सबको पालूस की तरह इस भेद को, इस सच को, इस जोर को खुदा जो तूने हम सबको बख्शा है कि रूह के जोर में ज़िंदगी बसर करें और जिस्म की ख्वाहिशों को मौका ना दें कि तेरी नाफरमानी करें। आज हम सबके साथ हो उन खानदानों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया, खुदा उन सब खानदानों के लिए भी तुझसे बरकत, तुझसे इत्मीनान और तसल्ली चाहता हूँ। बल्कि पाकिस्तान में तमाम मसीही बहनों भाइयों के लिए खुदा उन तुझसे इत्मीनान और तसल्ली चाहता हूँ, और खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा खुदा आज इस तूफान में, जंजले में खुदा अपने अजीज़ों को खो चुके हैं, तमाम लोगों के लिए भी खुदा तहफ़ आसमानी रहनुमाई चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।